ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर के उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है कि यज्ञ के प्रारंभ में बाप दादा के साथ सब लोग मिलकर के बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उसके बाद उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। बाबा ने कहा है कि इस सृष्टि चक्र में जब भक्ति का अंत होता है फिर क्या होता है? तब ज्ञान की शुरुआत होती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इंटरमीडिएट पढ़ाई करने के बाद, वो उधर देहरादून से करी थी और उसके बाद फिर हमारे ब्रदर इन लॉ उत्तर काशी में पोस्टेड थे हेल्थ ऑफिसर, तो गंगोत्री जमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ ये देखने का, क्योंकि वो पोस्टेड थे तो सारी ऑफिशियल सुविधाएं मिल जाती थीं, इस कारण से ये तीर्थ स्थल देखने का सौभाग्य मिला। तो तीर्थ के एम से तो नहीं गए थे, लेकिन भाई बहुत अच्छी जगह है, हिल स्टेशंस हैं, तो उनके साथ साथ हमारे सिस्टर हमारी माताजी वो भक्ति मार्ग में बहुत थीं और उसके बाद उनके साथ हम यानी चारों हम चारों ये तीर्थ स्थल करके आए। तो तीर्थ जैसा तो एम नहीं था क्योंकि भक्ति की उतनी भावना नहीं थी ऐसा, लेकिन ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा कि है कि जैसे जब भक्ति का अंत होता है तो ये भी भक्ति की पराकाष्ठा कि जो बहुत ऊंचे तीर्थ माने जाते हैं भक्ति मार्ग में उनको भले भक्ति के एम से नहीं लेकिन वैसे भी उन सब के दर्शन किए देखा और उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर बस जब लौट के आए, हमने तो इंटरमीडिएट पढ़ाई के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय, और वहाँ पर जब लौट के आए तो बस थोड़े दिन में ही बाबा का ये ज्ञान लखनऊ से मिल गया। लौकिक में हमारी माताजी का संबंध पास में रहने वाले एक माताजी से हुआ, आप शायद जानते होंगे, पहले वीरबाला बहन जी बहुत पुराने थे और उनके लौकिक पति गवर्नर हाउस में सर्विस करते थे, तो इस कारण से और वहीं पर ही हम लोगों का भी मकान था, तो थोड़े परिचय के बाद उन्होंने माताजी को ये ज्ञान बताया और माताजी ने फिर लौकिक पिताजी को, और उसके बाद ये तय हुआ कि चलो हमारे घर में ही क्लास इसका ज्ञान की शुरू हो जाए। तो घर में ही क्लास शुरू हो गई ईश्वरीय ज्ञान की। तो इस रीति से चूंकि घर में ही क्लास शुरू हो गई तो हम लोग माताजी पिताजी उनका तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन हम उस समय बीएससी में पढ़ते थे और हमारी छोटी लौकिक बहन गीता बहन जो ऊपर डाइनिंग में है इतना पांडव भवन में इतने वर्ष तक रही, और अभी डेढ़ दो साल पहले शरीर छोड़ा, तो इतने समय तक ये ज्ञान जो है जो वहाँ पर जब तक ग्रेजुएशन किया तब तक ये ज्ञान चलता रहा। तो भक्ति के बाद अब कईयों की भक्ति पहले से पूरी हो जाती है, कईयों की थोड़ा बहुत इस जन्म में होती है, और इस रीति से। लेकिन ये बात तो पक्की है कि भक्ति के बाद ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो लखनऊ में जब पढ़ाई करते थे तो बाबा कानपुर में आए थे, लखनऊ के पास ही कानपुर है 2 घंटे के रास्ते पर। तो ब्रह्मा बाबा कानपुर में आए थे, ये बात है शायद 1962 एंड या 63 शुरू की होगी। तो बाबा वहाँ आए थे तो सारे लखनऊ वालों ने निश्चित किया कि चलो सब लोग बाबा से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। तो सबने प्लान बनाया एक दिन, और इस प्रकार से बस से निश्चित तारीख पर वहाँ से शुरू हुए। लेकिन बहुत ठंडी के दिन भी थे और कोहरा वगैरह भी काफ़ी होता था, इसीलिए कानपुर तक पहुँचने में लेट हो गया थोड़ा। पहुँच तो जाना था सुबह 7-7:30 तक, लेकिन पहुँचे लगभग 8:30-9 बजे। तो बस बाबा की क्लास भी करीब करीब ख़त्म हो गई थी और बाबा ऐसे ही सब बच्चों के साथ चिट चैट कर रहे थे और लखनऊ वालों का इंतज़ार भी हो रहा था। तो इतनी देर में जब हम सब लोग पहुँचे वहाँ पर तो बाबा से फिर मिलना हुआ। तो बाबा की तो पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, बहुत मतलब ना फिजिकल पर्सनैलिटी भी और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी। फिजिकल तो भाई बहुत लंबा कद, गोरा रंग, एकदम आंखों के अंदर वात्सल्य भरा हुआ, पूरा डिविनिटी चेहरे से झलकती थी पूरा। और बस जिसको भी बाबा देखते थे वो देखता ही बाबा को रह जाता था, जो भी देखता था, क्योंकि लौकिक दुनिया में भी ऐसी पर्सनैलिटी बहुत बहुत रेयर होती हैं, क्योंकि फिजिकल पर्सनैलिटी तो बहुत होती हैं, लेकिन ऐसी डिवाइन भी पर्सनैलिटी हो जो आँख से देखे और तुरंत किसी को ऐसा भासना हो कि जैसे कि ये आँखों से निमंत्रण दे रहे हैं डिवाइन। और ऐसा बाबा के अंदर वो तेज था। एक तो गोरा रंग होता है, लेकिन वो तो बहुतों का होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाबा का कभी ऑरा जैसा देखने में आता था, ऐसे इतना क्लियर नहीं जैसा चित्रों में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के चारों तरफ लाइट का ऑरा, कोई इस टाइप का नहीं, लेकिन वो चेहरा ऐसा चमकता था जैसे वो लाइट चारों तरफ भी रिफ्लेक्ट होती थी। और चलना तो बाबा का बहुत डिवाइन था। बस वहाँ पर पहले तो जो लखनऊ के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे वो लोग बाबा से मिले, फिर हमारा भी टर्न आया, उस टाइम तो हम लगभग 17 साल के थे, तो टर्न आया, बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा कि आ गए बच्चे, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो हमने सुना बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो हम तो लौकिक रीति से ही समझे, तो हम तो कहा कि हाँ बाबा, एक हो रहा था, बस लेट हो गई, तो इसीलिए आने में लेट हो गया, 2 घंटा हो गया क्योंकि उस रीति से ही समझा। अच्छा, लेकिन बाबा तुम्हारा बस बहुत, जैसे खोए हुए, बाबा तुम्हारा बहुत समय से। फिर दादी यहाँ जो पास में बैठी हुई थी, गंगे दादी, प्रकाशमणि दादी जी, मनमोहनी दीदी जी आदि आदि, तो बताया कि बाबा का भाव ये है, कलप पहले के बिछड़े हुए हैं ना, तो इसीलिए उस ध्येय से बाबा बोल रहा है, क्योंकि ज्ञान भी लिया हुआ, नया नया हुआ था, तो तब देखा तो बाबा ने कहा समझा बच्चे, तो हाँ बाबा, तो उसके बाद तो बाबा ने कहा, फिर बाबा मिलते थे तो बाबा तो जब मिलते थे ऐसे, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ आओ प्यारे बच्चे, ऐसे जैसे मैग्नेटिक पुल होता है, बस कोई भी बाबा की बाह में एकदम खिंचा चला आता था। तो बाबा से मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो मैंने अपना लोग बताया नाम, एक्चुअली मेरा शारीरिक नाम श्री है, श्री होता है ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, तो श्री फर्स्ट नेम है, बाकी फिर सर नेम वगैरह। तो बाबा ने कहा क्या बच्चे, क्या बोला, तो मैंने बताया श्री नाम। तो बाबा ने कहा, बाबा बड़े जॉली स्वभाव के भी थे बहुत, हैं अच्छा श्री, आओ आओ दादी, आओ आओ, सबको बुलाया है कि बाबा को आज एक ऐसा बच्चा मिला है जो बाबा से भी महान है, ऐसा हो सकता है कोई। तो हम तो देखते रह गए कि भाई सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, बाबा ने खिंचाई शुरू कर दी जैसे, लेकिन बाबा का भाव ये था, बाबा ने कहा बच्चे, तो सब थोड़ा हंसने लगे वहां पर वो, लेकिन हम तो मतलब उसका भाव नहीं समझे पूरा। तब बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी तो श्री ब्रह्मा बाबा भी नहीं लगा सकता, श्री तो वो आत्मा लगा सकती है जो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी तो किसी का भी शरीर भी पवित्र नहीं है क्योंकि 5 विकारों से पैदा हुआ है, और आत्मा भी पवित्र नहीं है क्योंकि इतने 84 जन्म लेते लेते आत्मा भी पतित बन गई है। तो इसीलिए अभी तो श्री कोई लगा नहीं सकता है, तो बाबा तुम्हें ये लक्ष्य देता है कि तुम्हें श्री जैसा बनना है, और अब बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है। तो बाबा ने मोहन नाम रख दिया। तो ये भी एक सौभाग्य है कि बाबा के द्वारा मिला हुआ नाम है। अभी तक तो सुना ही करते थे कि दादियां वगैरह के नाम वगैरह बाबा, लेकिन हमने बहुत भाई बहनों का सुना जब साकार में थे, तो किसी के नाम में भी अगर कोई अगर होता था ऐसी बात, तो बाबा उसका नाम चेंज कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम माया देवी है, तो बाबा कहता था अब माया का क्या काम बच्ची, अब तो माया से विदाई लेनी है, अब तो तुम्हें ऐसा देवी देवता बनना है, तो बाबा कोई ज्ञान का नाम वो दे देता था। इसी तरह कईयों के नाम ऐसे होते थे जो बाबा बदलता था, और बहुतों के तो बदले ही नहीं जाते थे। तो बाबा कहता था देखो, जिनके नाम बदले नहीं गए हैं वो भी ये ना समझें कि हमें बाबा ने कोई नाम नहीं दिया। नहीं, नाम बदलने का भाव ये है कि हम पुराने शरीर से संबंधित पुरानी बातें, पुराने संबंध, पुराने वो सब भूलते जाएं और अपने को भी वो शरीर न समझे, अपने को समझे मैं आत्मा और ये शरीर पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। तो उस रीति से आप सब भी ये समझो कि बाबा ने ना भले लौकिक रीति से साकार में न मिले हों, लेकिन बाबा का भाव संगम योगी सभी ब्राह्मण वत्सों के लिए यही है कि पुरानी चीजें इस शरीर से संबंधित सब भूलो। मैं ये मेरे बच्चे हैं, ये पति है, ये पत्नी है, ये माँ है, बाप है, वो सब भूल के कि हम सब आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं और इस रीति से हमें ये समझना है और केवल समझना ही नहीं वैसा ही जीवन में व्यवहार करना है। तो इसीलिए भले बहुत आप लोग सब अलग अलग टाइम से आए होंगे, बहुत साल 25, 30, 40, 50 साल भी हो गए होंगे आप लोगों को, लेकिन अब जब से भट्टी में आए हैं तब से ये पक्का कर लें कि भट्टी में बाबा ने जैसे हमें कोई भी जैसे नया रूप दिया है और भले कोई नाम उस रीति से साकार बाबा जैसे देते थे वो नहीं दिया है, लेकिन हम ये समझें कि मेरा नया ब्रह्मा कुमार तो बने ही है, अब आगे क्या बनना है, क्या बोलता है बाबा, फरिश्ते भी बनना है, देवता भी बनना है और ब्रह्मा कुल के है ना, आज भी बाबा ने कुछ बोला ना क्या, ईश्वरीय कुल के ये सब तो हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जैसे परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए भले देखने में वही पुराना घर है, पुराना परिवार है, पुराना सब है, लेकिन हमारा व्यवहार जो है वो कम्प्लीटली उनसे लौकिकता में नहीं होना चाहिए। तो कहने का भाव ये है, इसीलिए बाबा ने वो ही उस रीति से कहा। फिर उसके बाद तो खैर सब लोग मिले, रोज क्लास होती थी, क्लास सुनते थे, जाते थे। तो ये तो पहली मुलाकात जैसे बाबा से थी। अब बाबा हर एक के साथ ना जैसा होता था व्यक्ति वैसा ही व्यवहार जैसे बाबा का देखने में आता था। फिर तभी कुछ महीने में हमारा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ आईआईटी में, तो धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है, वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पर हमने कहा, हमारे लौकिक पिताजी ने कहा कि भाई वो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, इंजीनियरिंग सिलेक्शन हुआ है, अब जाना है। तो हमने बोला कि चलो बाबा से पूछ लेते हैं, क्योंकि शुरू से ही ये है, समय बहुत कम है, जल्दी से पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, तो यही सुना करते थे, लक्ष्य होता था। तो बाबा के पास गए, तो मुझे याद है यही झोपड़ी में ही ना इधर बाबा से मिले। हमारे से पहले दो भाई लोग और भी थे कुमार, तो वो भी बैठे हुए थे, टाइम दिया हुआ था, लच्छू दादी होती थी तो वो सबको टाइम दिया करते थे, अच्छा 10 बजे आपको मिलना है, 10:30 बजे आपको मिलना है, 11 बजे इस पार्टी को मिलना है, जो जो पार्टी जहाँ जहाँ से होती थी अलग अलग जगह से मिलते थे। तो पहले एक भाई गया, हाँ उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था और बाबा से पूछा उसने कि बाबा अब मेरा तो मतलब ये आगे पढ़ो, परिवार वाले तो बोलते हैं पढ़ो और मेरी दिल नहीं है, समय तो आप कहते हैं बहुत कम है, तो मैं पूछ। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे ठीक है, पढ़ाई तुम्हारी पूरी हुई, अब तुम सेवा में लग जाओ। उसको बाबा ने वैसा दिया। एक दूसरा भाई आया था बॉम्बे से, वो बिजनेस परिवार का था, तो बिजनेस में उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस था, तो फैमिली में फादर वगैरह चाहते थे, उसने भी ग्रेजुएशन कर लिया था, तो उसको भी बाबा ने बोला कि ठीक है तुम बिजनेस में लगो, लेकिन लक्ष्य ये रखो कि मुझे माता पिता को और परिवार को भी ज्ञान में लाना है। तो वो लक्ष्य रख के चलोगे, और परिवार वाले बोलते थे कि भाई तुम ये ज्ञान वगैरह में नहीं चलो, ज्ञान में चलोगे तो फिर तुम अपना अलग वो करो। तो इसीलिए बाबा ने कहा नहीं, अलग करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा लक्ष्य ये है कि परिवार, चैरिटी बिगिंस एट होम, इस तरीके से। तो उसको भी कहा कि ठीक है पढ़ाई पूरी हुई, तुम बिजनेस में लग जाओ। और तीसरा टर्न हमारा आया, तो फिर हम गए तो हमने भी बाबा को बताया ऐसे ऐसे ये ग्रेजुएशन किया है और इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है, तो हमारी भी दिल नहीं है कि वहाँ पर कहाँ जाएं, इतना 4-5 साल का कोर्स है, इंजीनियरिंग करें, और अभी तो विनाश जल्दी होगा, पहले से ही ये था कि समय बहुत कम है। तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें तो पढ़ना है। तो मैंने कहा अरे बाबा ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, हाँ मेरे से पहले आपने बोला उन दोनों को, भाइयों को, कि भाई पढ़ाई ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, मैंने भी कर लिया है, अब मुझे आपने कह रहे हो कि तुम्हें पढ़ना है। तो बाबा ने कहा देखो सबकी जन्म पत्री अलग अलग होती है, तुम्हारे द्वारा बाबा को क्या सेवा लेनी है वो बाबा जानता है, तो इसीलिए तुम्हें देश विदेश में कितनी सेवा और तुम्हारे द्वारा क्या क्या काम बाबा को कराने हैं वो बाबा जानता है, इसीलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो ठीक है बाबा ने कहा है तो गए, और वाकई पहले से ही पता चल गया फर्स्ट ईयर से ही बाबा को कैसे कार्य कराना था। धनबाद में पढ़ने गए, वहाँ कोई सेंटर तो था नहीं, तो बाबा से भी कई राय ली किस तरीके से करना है, लेकिन बाबा लेटर लिखते थे हॉस्टल में भी, और मुरली हॉस्टल में आती थी कि भाई वहाँ पर ये सेवा करो, मकान लो और सेंटर खोलो। अब हम तो खुद ही स्टूडेंट, खुद ही डिपेंडेंट, माता पिता से पढ़ाई का वो आता था खर्चा, तो वो करते थे, लेकिन बाबा की कमाल है, बाबा को कराना होता है। तो वहाँ पर एक तरफ पढ़ाई शुरू करी, वैसे हमारा एडमिशन में जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो काफ़ी लास्ट में नंबर था, 150 स्टूडेंट लिए जाते हैं तो लास्ट की तरफ, लेकिन फिर वहाँ पर इंटरनल एग्जामिनेशन होता है स्कॉलरशिप के लिए। तो इंटरनल जब स्कॉलरशिप में एग्जामिनेशन हुआ उसमें हमारा नंबर हाई आ गया और स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो उससे क्या हुआ कि घर से जो आता था उससे अपना हॉस्टल का और पढ़ाई का फीस वो चलता था, और बस स्कॉलरशिप से मकान वहाँ पर लिया और पहले साल से ही बाबा का सेंटर वहाँ शुरू। तो देखो करण करावन हार की क्या विधि है, क्या उसके नॉलेज में है, वो क्या कराना चाहता है वो ही जानता है, लेकिन हम बच्चों को बस अगर हाँ कहते रहते हैं तो फिर बाबा ऐसे ही शुरू में पहले हमने कहा कि बाबा वहाँ तो भोजन हॉस्टल में खाना पड़ेगा, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे उसको शुरू में खाओ, जब हम योग बल से नई सृष्टि की रचना रच देते हैं तो क्या हम भोजन को पवित्र नहीं कर सकते। बाबा ने इतना हिम्मत दिलाया, एक तरफ तो ये हिम्मत दिलाया उसको जो बनाने वाला हो उसको थोड़ा सा युक्ति युक्त रीति से कुछ एक्स्ट्रा देकर भी करना, वो बिना प्याज लहसुन का निकाल देगा और इस तरीके से चल सकता है। तो शुरू में जैसा बाबा ने कहा वैसा करा, लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे बताया मकान मिल गया और सेंटर खुल गया तो बस फिर उसके बाद तो सेंटर पे बहनें रहने लगीं और वहाँ पर से खाना आना शुरू हो गया और हॉस्टल में रहते थे और पवित्र भोजन मिलने लगा। तो देखो बाबा ये परीक्षा भी लेता है और बाबा अगर कहता है ना तो फिर उसमें विकर्म नहीं बनता, लेकिन कभी अपनी इच्छा से उसके अंदर वो करते हैं। मुझे याद आता है कि जब सेंटर खुल गया तो एक भाई आते थे, उनको काफी बुजुर्ग थे तो उनकी लड़की की मैरिज थी, तो वो उन्होंने कहा कि भाई मैरिज ये जो है और कार्ड वगैरह दिया। तो बहनों ने कहा हम लोग तो कहीं नहीं आते जाते हैं, ये भाई आपके यहाँ आ जाएंगे। वहाँ पर हम थे और हमारे साथ एक दूसरे भाई भी, विनोद भाई भी, वो भी निकल गए थे। तो हम दोनों, तो क्योंकि ये तो वैसे भी हॉस्टल में खाते हैं, उस समय पहले हॉस्टल में खाते थे, तो आपके यहाँ मैरिज में आ जाएंगे, ये हमारी तरफ से अटेंड कर लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो बाबा ने ना कितना, बाबा ने संदेश दिया, संदेशी थी वो बहन वहाँ के, कि संदेश दिया कि बच्ची ये तुमने गलत काम किया। क्या कि वो क्यों खा लेंगे वहाँ, कि बाबा वो तो वैसे भी हॉस्टल में खाते हैं, तो कि नहीं हॉस्टल में खाते हैं श्रीमत पर। बाबा ने उन्हें कहा है कि जब तक सेंटर से प्रबंध नहीं हो जाता तब तक हॉस्टल में खाओ, तो हॉस्टल में खाते हैं श्रीमत पर, लेकिन यहाँ पर किसी के मैरिज है या कोई ऐसा व्यवहार है उसमें भेज रहे हो, ये श्रीमत बाबा की नहीं है। तो देखो कितना फर्क पड़ जाता है हम लोगों के सोचने में और बाबा के सोचने। बाबा श्रीमत देता है तो वो जैसे लड़ाई लड़ने वाले सैनिक भी होते हैं ना, भले गोली मार देंगे दूसरा मर जाएगा तो भी बाबा कहते हैं उसमें उस विकर्म नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन अगर वैसे किसी का झगड़ा करो और कोई वो करो तो उसमें तो क्रोध और विकर्म बन जाता है। तो देखो कितना फर्क है कि कोई कार्य अगर हम श्रीमत के आधार पर करते हैं और कोई कार्य हम अपनी मन मत से करते हैं। तो तब से एक तो ये मिलना शुरू हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर इंजीनियरिंग में पढ़ाई वगैरह करी, 4 साल पूरे हुए और उसके बाद मधुबन तो आना होता था, मिलना भी बाबा मामा से होता था, बाबा से विशेष करके, और मिलते थे। ये मैं 63 की बात बता रहा हूँ, 63 में हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे, उसमें से मोस्टली आप सबका तो काफियों का जन्म भी नहीं हुआ होगा 63 में लौकिक रीति से। खैर उसके बाद जब 67 में वहाँ पास किया ना, तो वहाँ पर जब बाबा के पास गए हम कि बाबा ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है और इन 3 जगह सिलेक्शन हुआ है, तो वो 3 जगह ले गए। एक हैदराबाद में हुआ था NGRI में, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और एक ONGC है। तो बाबा ने कहा किसमें जाना है, तो मेरा तो विचार था कि उन हैदराबाद या दिल्ली चले जाएं क्योंकि वहाँ सेंटर है और वहाँ पढ़ाई की पालना होगी, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे तुम्हें आसाम जाना है, आसाम में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो मैंने कहा बाबा वहाँ तो एक भी सेंटर नहीं है, ना गीता पाठशाला है, ना कोई स्टूडेंट है, एक भी नहीं है। तो बाबा ने कहा इसीलिए तो बाबा तुम्हें भेज रहा है कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर अभी तक तो जो पालना ली है अब पालना देने का समय आया है, वहाँ जाओ। और बाबा ने बाकायदा सब नीचे बिछाने की बड़े अच्छी कारपेट थी, देखो इस पर बैठा के वहां पर योग करना, फिर ग्रामोफोन और रिकॉर्ड उस समय वो चला करता था, तो ये तो टेप वगैरह तो थे नहीं, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड टेप और चार मुख्य चित्र हुआ करते थे, त्रिमूर्ति झाड़ लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। तो ये जाओ बच्चे वहां जाओ और फिर देखना बस बाबा की कमाल। और वहां पर बस बाबा हर हफ्ते बाबा का लेटर आता था, वो जगह का नाम था शिव सागर आसाम में, तो वहां पर ये तो वहां जब क्लास करते थे बाबा कहते थे बच्चे बस शिव सागर वो जगह है, वहां पर बहुत बड़ी एक लेक है, सागर इसीलिए बोलते हैं, और साथ में शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, तो शिव सागर इसलिए उस जगह का नाम पड़ा हुआ है। तो बच्चे बस वहाँ जाना अलग अलग मंदिरों में, वहाँ पर सारे के सारे ज्ञान सुनाना सबको, और ज्ञान भी सुना करके उसके बाद इन लोगों को ये मुरली तक लाना, ये तुम्हारा काम है पहले। तो बस हम तो पहले वहीं चित्र खोल के बैठ जाते थे सुबह शाम क्लास ऑफिस के टाइम के अलावा, और बस लोग आते थे और थोड़ा चित्र समझने का प्रयास करते थे, चित्र उनको समझाए जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे मारवाड़ी माताएं ज़्यादा आने लगी, क्यों? क्योंकि मंदिर वगैरह में तो भाई लोग तो सुबह ही सुबह हो आते हैं, तो सुबह तो ऑफिस वगैरह का जरा होता था, तो इसीलिए माताओं की संख्या बहुत बढ़ने लगी। और माताओं ने कहा कि आप हमारा वो दूसरा मारवाड़ी पट्टी में मंदिर है मारवाड़ियों का, वहां आकर के ये ज्ञान सुनाओ। तो वहां जाके, क्योंकि वहां तो मंदिर के बाहर ही नीचे जमीन पे बैठ जाते थे, और वो तो मंदिर मारवाड़ी मंदिर था, वहां तो सब बाकायदा मकान बना हुआ और संदली और सब कुछ था, तो बाबा को करामात वहां से ही दिखानी थी, क्योंकि शुरू में ना ये करा और इसके बाद बस वहां पर जाके ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो ज्ञान तो सुनाते थे हम, लेकिन बाबा ने क्या किया कि छोटी छोटी बच्चियां भी थी, माताएं ज्यादा आती थी, भाई कम आते थे, तो उनमें से कईयों का ध्यान का पार्ट खोल दिया साक्षात्कार का। और भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, तो वो ध्यान में चले जाते थे और बस आपस में रास करते थे, और आके जब समाचार सुनाया करते थे, क्योंकि उन्हीं की ही बच्चियां उन्हीं के ही वहीं के ही लोग, तो इसीलिए विश्वास न होने का कारण ही नहीं है, अगर कोई और बाहर के लोग होते तो अविश्वास की बात होती है। तो इस तरीके से बाबा को वहां का बस आके वो लोग सुनते थे और ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगा और सब ज्ञान हो गया। तो देखो ब्रह्मा बाबा शुरू से ही, और मैं वो बात बताना भूल गया, यहाँ तो ये सेवा हुई, लेकिन जब बाबा ने बोला उन दो भाइयों को बोला था जो मेरे से पहले कुमार वगैरह थे कि भाई आप लोग तो मतलब जॉब करो और ये, और मुझे पढ़ने को बोला था और मैं इंजीनियरिंग पढ़ने गया, तो बाबा जानी जाननहार है, तो कैसे एक भाई के जिसने पढ़ाई तो कर ली थी लेकिन और पढ़ना चाह रहा था, बाबा ने कहा नहीं बच्चे तुम जॉब करो, और उसका कुछ 3-4 साल बाद एक एक्सीडेंट में देह त्याग कर दिया उसने, शरीर छोड़ दिया। तो देखो अगर वो पढ़ता तो वो पढ़ाई भी काम में नहीं आती, और कम से कम कुछ साल जो उसने सेवा कर ली वो सेवा का तो भाग्य बन गया। दूसरा भाई जो था बिजनेस वाला, तो उसने पहले तो काफी माता पिता ने अपोजिशन किया, बाद में फिर वो बिजनेस करता रहा, उनकी बात में को कि भाई सपोर्ट करता रहा, तो जब बिजनेस में भी मदद मिलने लगी तो फिर उसके माता पिता और वो सब भी ज्ञान में आ गए। तो बाबा हरेक की जन्म पत्री देख करके तब श्रीमत देता है, ये हमें कई बार जीवन में वहां पर अनुभव हुआ। फिर उस वहां पर जब आसाम में हम थे, अब बाबा ने कहा आसाम जाओ बच्चे, वहां पर बहुत बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे भोले भाले बच्चे हैं, अभी तक वहां कोई संदेश नहीं पहुंचा है, तुम्हें जाके वहां पर संदेश देना है। तो हम गए और वहां पर वास्तव में काम तो बाबा का ही था, हमें तो कोई ना सेवा का अनुभव था ना कोई भाषा का, वहां का भाषा का कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा करण करावनहार है, बाबा ने कुछ सेवा तो ध्यान के पाठ के द्वारा करा दी और कुछ सेवा सारा ज्ञान लोग सुनने लगे और इस प्रकार ब्रह्मा बाबा का वहां पूरा सपोर्ट मिलने लगा। तो पूरा ये जब चलता रहा तो वहां पर हमें एक बार मैसेज आया देहरादून से कि बाबा जो है ना यहाँ पर हम म्यूजियम बनाने वाले हैं, आप कुछ छुट्टी लेके आ जाओ, थोड़ा म्यूजियम का गाइडेंस बता दो। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने कुछ छुट्टियां ली, बाबा को लिखा कि बाबा ऐसा छुट्टी लेके हम देहरादून जाने का प्लान कर रहे हैं। तो बाबा का तुरंत ही एकदम आया कि बच्चे वहां जाना जरूर जाओ सेवा में, लेकिन पहले यहां आओ मधुबन और तुरंत आओ। तो हमारे पिताजी तो तब देहरादून में उधर थे और हम आसाम में, तो हमने उन्हें लिखा तो आसाम से हम यहाँ के लिए आए फ्लाइट में, पहली बार ही तब 67 की बात है ये, जनवरी मास की। तो 67 में जनवरी मास में पहली बारी, चूंकि बाबा ने कहा आओ और तुरंत आओ, तो फ्लाइट वहां से ली, फ्लाइट कलकत्ता दिल्ली होते हुए, और रास्ते में फादर भी मिल गए लौकिक पिताजी, और हम लोग यहाँ 17 जनवरी को 69 को यहाँ पहुंच गए। कौन सी तारीख को? 17 जनवरी। तो आप समझो कि बाबा ने लिखा और बाबा ने जब भेजा था तो मैं कह रहा था बाबा इतनी दूर आसाम में, वहां तो कोई भी नहीं है सेंटर, और तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे जाओ, बाबा तुम्हें समय पर बुला लेगा। बस आसाम इतनी दूर, लेकिन समय पर 17 जनवरी को बाबा ने बुला लिया, और हम 17 जनवरी की सुबह हम और हमारे लौकिक पिताजी आए और दो दिन बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो देखो कम बात है ये क्या, कि जो यहाँ रहते थे वो सब कोई भी पार्टियां वगैरह नहीं थी, लेकिन बाबा ने दूर में दूर आसाम में ही सेंटर था, विदेशों में तो कोई था नहीं, और तो बाबा ने बुला लिया, और वो कर्मातीत अवस्था का अनुभव हमें अपनी आंखों से देखने का मौका मिला बाबा का। और वो देखा तो वो मैं आपको कुछ बात जरूर बताना चाहता हूँ कर्मातीत अवस्था की बाबा की, क्योंकि पहले जब भी बाबा से मिलते थे तो बाबा कहते थे कि भाई हाँ बच्चे कैसी सेवा है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, हम लोग पूछते थे बाबा उत्तर देते थे। लेकिन इस 17-18 जनवरी को हमने देखा कि हमें पूछने की जरूरत, हम बाबा के सम्मुख गए कि बाबा से ये पूछेंगे, बस बाबा ने नैन मुलाकात की और बस बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। यानी कि हमारे मन के अंदर क्या प्रश्न है, क्या पूछने आए हैं, वो भी बाबा ने बता दिया और उसका समाधान भी उत्तर भी दिया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, 17 और 18 जनवरी को 5-6 बार बाबा से मिले, लेकिन ये कमाल बाबा की देखी। और ये कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण होता है जिसे हम सब लोग कहते भी है ना, मन जीते जगत जीत। जिसने अपना मन जीत लिया वो दूसरे के मन की बात को तुरंत पढ़ लेगा। तो बाबा ने अपने मन के ऊपर इतना विजय प्राप्त कर ली थी कि दूसरे के मन की बात को तुरंत पढ़ के उसका बाबा समाधान कर देता था। तो एक तो हमें कर्मातीत तो हम सबको बनना है, इसीलिए कर्मातीत हुए बिना तो हम लोग जा नहीं सकते परमधाम वापस। इस संदर्भ में पहले मैं एक मम्मा की बात सुना देता हूं कर्मातीत के रेफरेंस में, कि 65 की बात है, हमने ये सुनी है, हमने देखी नहीं है लेकिन सुनी है। मामा यहीं पर थे, मामा की तबीयत खराब चल रही थी तो मामा को बाबा ने कहा लास्ट डे मामा अपने हाथ से बच्चों को अंगूर देंगे, तो हाँ हाँ, तो मामा हमेशा हाँ करते थे, सबको अंगूर वगैरह खिलाए। और बस फिर बाद में नैन मुलाकात करते हुए मामा ने छुट्टी ली, शरीर छोड़ा 1965 में। मालूम है ना, अभी हाल ही में उनका दिन भी मनाया होगा। हाँ, कौन सा दिन था? तो उस दिन मामा ने शरीर छोड़ा, मामा ऊपर गए सूक्ष्म वतन में, तब तो साकार बाबा यहीं थे ना 65। तो मामा जब ऊपर गए तो ऊपर में अव्यक्त बाप दादा जो वहां पर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा, पूछा मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आए? तो मामा पहले तो चुप रही, फिर मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। नहीं किया तो जाओ अभी हिस्ट्री हॉल में तुम्हारा शरीर रखा हुआ है और तुम वहां जाओ, शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो, उसके बाद ऊपर आना, वहां बाबा भी योग कर रहा है, तुम बच्चों को दूसरे बच्चे भी योग कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन भी कर रहे हैं, जाओ बाबा तुम्हें भेजता है, तुम जाओ। तो मामा ऊपर से नीचे आए, शरीर छोड़ के चले गए थे लेकिन फिर बाबा ने भेजा। तो यहाँ थोड़े समय रहे, उसके बाद फिर मम्मा ऊपर गए। तो ऊपर जाके बाबा ने फिर पूछा कि मम्मा अनुभव किया कर्मातीत स्थिति का? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया। क्यों बच्ची? इसके लिए तो तुम्हें भेजा था कि बाबा जब मैं गई तो शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, कोई भी ब्लड सर्कुलेशन कुछ नहीं था, और मैंने कोशिश भी करी जाऊं शरीर में लेकिन शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कोई भी कर्तव्य नहीं कर सकी, क्योंकि कर्मातीत अवस्था यानी कर्मों से अतीत कर्म करते हुए भी उससे न्यारेपन का एकदम अनुभव हो। तो मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं कर सके, तो मैं आ गई। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, जैसे तुमने कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया और तुम्हें आना पड़ा, और अभी भी तुम परमधाम नहीं जा सकती, अभी तुम्हें जाना पड़े, जो भी बचा हुआ हिसाब किताब है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए वो सब पुरुषार्थ करना पड़े, उसके बाद तुम तब परमधाम अपने स्थान पर जा सकोगी, अभी तो तुम्हें जन्म लेना पड़े, जाओ। और जन्म भी, और बाबा ने कहा सभी बच्चों के लिए ये मैसेज है कि कोई भी बच्चा बीच में आ ही नहीं सकता जब तक ब्रह्मा बाबा ने वहां का गेट नहीं खोला है। ब्रह्मा बाबा तो अभी तक भी सूक्ष्म वतन में ही है ना, तो इसलिए वहां नहीं जा सकते, तो अभी अगर हम परेशान भी हो जाए, मानो शरीर से परेशान, कोई बीमारी है, कोई परिवार वालों से कहीं कलह कलेश है, कोई धन का प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, ये संकल्प कभी नहीं आना चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं। शरीर छोड़ने का संकल्प बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल है। और इसके बाद तो फिर बच्चे का शरीर लेना पड़ेगा, फिर पुरुषार्थ तो कुछ 8-10 साल तक होगा नहीं, और फिर परमधाम तभी जा सकती है आत्मा जिस स्थिति में आत्मा परमधाम से आई थी। परमधाम से किस स्थिति में आई थी? एकदम पवित्र रूप में। तो वो वैसा ही बन के तुम्हें जाना है। तो इसीलिए हम सब लोग भी ना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जीवन में किसी प्रकार की, कभी शरीर छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। ये बाबा ने खास सब बच्चों को हिदायत दी हुई है। और इसके बाद फिर तो मतलब मामा ने मतलब दिया होगा, अभी तक तो बाबा को जब पार्ट खोलना होगा उस समय बाबा पार्ट खोलेंगे। लेकिन तो असली बात यह है, तो ब्रह्मा बाबा का भी ना, अब मैं फिर उसी बात पर आता हूँ जो ब्रह्मा बाबा की बात बता रहा था मैं 18 जनवरी की। तो 17-18 जनवरी को एक तो बाबा मन का हाल उन्होंने बाबा ने तुरंत जान लिया, दूसरा बाबा ने कहा जो भी पत्र के उत्तर देने बाकी हों वो बच्ची लिखा लो इशू दादी से सारे उत्तर। किसी बच्चे को ये संकल्प नहीं होना चाहिए कि बाबा ने मेरे पत्र का उत्तर तो दिया नहीं और बाबा तो चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस रीति से, और नक्की लेक पर जो मकान है ना, जहाँ म्यूजियम है अपना, तो उस समय वहाँ प्रदर्शनी लगाई हुई थी, तो बहुत टाइम से सबका विचार था ये मकान को ले लिया जाए, जिससे कि यहाँ पर एकदम सनसेट रोड पर है, लोग आकर देखेंगे, बहुत सेवा होगी। तो बाबा ने उसी दिन बचा हुआ काम उस पर हस्ताक्षर करे। और चौथी बात, बाबा ने रोज क्लास 8:45-9 बजे होती है रात को, उस दिन बाबा ने कहा कि आज बाबा 7 बजे ही क्लास कराएगा, सब बच्चे भोजन करके 7 बजे तक क्लास में आ जाए, भोजन करके, क्योंकि बाबा को मालूम था, आभास हो गया था बाबा को पहले कि मैं ये शरीर जैसे छोड़ने वाला। तो ये समझिए, क्योंकि उसके बाद तो अगर बाबा शरीर छोड़ता उसके बाद भोजन होता भी तो भी कोई खाता नहीं। तो इस तरीके से बाबा को कर्मातीत अवस्था का एक तो ये लक्षण कि दूसरे के मन की बात पता चल जाएगी, दूसरा कोई काम पेंडिंग नहीं होगा, बचा हुआ काम नहीं होगा। आप सबने भी सुना है भक्ति मार्ग में ये होता है ना, जब तक कोई आत्मा बीमार है, बहुत शरीर छोड़ने वाली है लेकिन आत्मा निकल नहीं रही है, उसकी शरीर छोड़ नहीं रही है, क्यों? क्योंकि उसको कोई की स्मृति है या कोई उसे याद कर रहा है, वो उसे याद कर रही है। जब तक वो आत्मा आके मिल न ले या बात न कर ले, या तब तक यूजुअली शरीर नहीं छोड़ते, अक्सर करके ऐसा होता है। लेकिन इसीलिए बाबा ने कहा हर बच्चे को यह संदेश देना कि कोई काम पेंडिंग ना रखें, बचा हुआ काम नहीं। अक्सर करके हम लोग कामों को टाल देते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, महीने भर बात कर लेंगे, नहीं कोई काम, क्यों? क्योंकि जो काम अगर अधूरा रह गया ना, तो नियम है कि अंत समय वो ही याद आता है जो काम रहा हुआ। अगर हमने संकल्प किया मैं अपना मकान सेवा में दे दूं और नहीं दिया, चलो अगले महीने कर दूंगा या कुछ, और शरीर चला गया, छूट गया, तो फिर हमेशा के लिए वही याद आता रहेगा और पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा, और सदगति तो होगी नहीं, क्योंकि अंत मते सोगति का गायन है। इसीलिए याद कर करके सारे अपने काम जो है ना धीरे 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 निपटाते रहना चाहिए। बहनों को भी कोई अगर घर की चाबी वाबी कोई बहुओं को देनी हो तो दे दहा के पूरा करो, नहीं तो वही याद आती रहेगी। पेंडिंग काम जो होता है ना, रहा हुआ काम, अंत समय याद ही वो आता है जिससे नष्टो मोहा स्मृति लब्धक है ना, जिससे या तो बहुत मोह होता है, बहुत प्यार होता है, वो याद आएगा, या किसी से घृणा होगी, नफरत होगी, किसी ने हमारे मार्ग में बाधाएं डाली हुई होंगी, उनको अभी भी अगर सामने आएंगे तो हम नजर बचा के निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे मार्ग में अगर बाधाएं रुकावट डालते हैं तो हमें लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस कारण से ये आवश्यक है कि हम ऐसी स्थिति का अनुभव करें। तो बाबा ने अंत समय में क्या करा कि ये ही बाबा ने बस वो करा अंत समय, क्या जिस दिन क्लास, जल्दी क्लास भी कराई, बाकी वो तीन चार काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो भी पूरे करे, और उसके बाद बाबा क्लास में आए। और बाबा ने क्लास में आके ना बिल्कुल फिर वही कहा कि आओ बच्चे, बस अंत समय में सबसे बड़ा पेपर कौन सा होता है? ये शरीर का पेपर, क्योंकि अंत में तो कोई और काम होगा नहीं, तो आत्मा और ये शरीर, आत्मा और शरीर में कशमकश चलेगी। आत्मा जैसे निकलना चाहेगी, शरीर के संबंध खींचना चाहेंगे, और वो जब चलती है तो वो उसके लिए हमें पूरा तैयार रहना चाहिए। बाबा ने भी ऐसे ही करा, बाबा ने क्लास कराई, और क्लास करा के बाबा अपने कमरे में गए और बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा बाबा ने कहा। पहले कभी ऐसा बाबा ने नहीं कहा था, और जब छुट्टी लेता है, विदा लेता है, गए बाबा और बस कमरे में गए तो बाबा के पेन तो होना शुरू हो गया था, बहुत पेन हो रहा था हार्ट में, और कई बार बाबा कहता भी है शरीर छोड़ने का सबसे बढ़िया यही वो है, और बस दादी के हाथ में हाथ और बस नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी दी। तो इस रीति से हमें भी बाबा की तरह अंतिम अवस्था के लिए तैयार रहना है। बाबा से बच्चों ने पूछा कि बाबा अंतिम दिन आपको क्या आभास हो रहा था, जब आप शरीर छोड़ने वाले थे, क्लास करा के गए, आपको कैसा अनुभव हो रहा था? तो कहा कि बच्ची, एक तरफ कर्म भोग और एक तरफ योग बल, उन दोनों की युद्ध चल रही थी। कर्म भोग, हाँ, शरीर में एक तरफ बहुत तेज हार्ट पेन भी हो रहा था, बस शरीर जैसे छूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और दूसरी तरफ योग बल की कमाई। मैं बाबा को याद भी कर रहा था, बाबा बस मैं आपके पास आ रहा हूँ बाबा, और ये ही संकल्प था तो दोनों की युद्ध चल रही थी। तो शुरू में तो कर्म भोग ज्यादा बलवान था, तो वो ज्यादा शक्तिशाली था, तो वो दर्द ज्यादा था, लेकिन धीरे 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 जितना मैं बाबा का आवाहन करता चला गया, बाबा बस मैं आत्मा आपके पास आ रही हूँ, और धीरे धीरे मेरा योग बल बलशाली होता चला गया, कर्म भोग हल्का पड़ता चला गया, और फिर मैं आत्मा शरीर छोड़ के बाबा के पास आ गई। तो हम सबको भी ये अंतिम पेपर के लिए ये तीन तैयारियां करनी है। एक तो कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है, दूसरा जो कहा है हा? कि न किसी से मोह, न किसी से घृणा वगैरह। कबीरदास जी ने जैसे कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखो बैर का तो ठीक है, सब बोलेंगे किसी से बैर नहीं रखो, लेकिन दोस्ती तो सबसे रखो। लेकिन बाबा इससे भी निकालना चाहता है कि जिससे अगर बहुत मोह हो गया, स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, तो अंत समय वो याद आ गया तो वो भी दुर्गति हो जाएगी, अंत मते सो गति नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे से भले किसी का व्यवहार, अपने दैवी परिवार में ही किसी भाई बहन का व्यवहार चाहे गलत हो, हमारे मार्ग में चाहे रुकावट डालता हो, चाहे कोई भी हमें ऐसा महसूस होता हो कि ये आत्मा जो है हमें आगे बढ़ता हुआ देख के इसको तकलीफ है, तो फिर क्या होना चाहिए? वो भी नहीं होना चाहिए। वो न भी बोले आपसे, लेकिन आप उससे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कभी नहीं करो। आप उसे बोलो, हेलो बहन जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हेलो भाई जी, आप कैसे हो। एक बार आप बोलेंगे, वो नहीं बोलेगा, दो बार बोलेंगे, तीन बार, आप देखोगे तीन चार बार बोलेंगे, फिर वो अपने आप ही उसका रिस्पॉन्ड शुरू हो जाएगा। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन रहा ना, तो अंत समय वो व्यक्ति जरूर याद आएगा और उससे दुर्गति हो जाएगी, अंत मते सो गति नहीं होगी। और तीसरा, कोई भी काम पेंडिंग ना रहे, जो भी है विल करनी है, जो भी चीज करनी है, तो इस तरह बाबा की तरह हमें अंतिम समय बाबा के जो भी दो तीन काम रह गए थे, वैसे तो सब बाबा दो एक दो साल पहले से समेटना शुरू कर दिया था, सबको ड्यूटी बांट के बाबा बिल्कुल न्यारे प्यारे रहने लगे थे, लेकिन अंतिम दिन भी बाबा ने सारे लेटर लिखा है जो जो आपको बताया, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहा। नहीं तो पेंडिंग काम अंत समय याद रहता है, जैसी आत्मा निकलती है, अरे ये काम रह गया, उस काम को पूरा करने के लिए फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। तो इसीलिए बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था से हमने तो यही लेसन लिया है कि हम लोगों को भी बाबा की तरह बिल्कुल तैयार रहना चाहिए अंतमति सोगति के लिए, और कोई भी काम ऐसा न रहे जो पेंडिंग भी रहे। और साथ ही साथ एक बात और बहुत जरूरी है, वो ये है, मन की तो बात हम लोग रोज करते हैं, रोज मन को वशीभूत करने का योग भी करते हैं, मन जीते जगत जीत करते हैं सब, लेकिन प्रकृति जीते जगत जीत, अधूरा रह जाएगा अगर मन जीते जगत जीत हुआ। प्रकृति पांच तत्वों को अगर हमने नहीं जीता है तो भी हमारी सदगति नहीं हो सकती। अब ब्रह्मा बाबा ने भी ना इन पांच तत्वों को, बाबा एकांत में बैठ के कई बार बैठते थे, बाबा आप क्या कर रहे थे भाई, योग कर रहा था, और मैं बोलते थे कभी, आज मैं जल तत्व को योगदान दे रहा था, आज मैं वायु तत्व को योगदान दे रहा था। और जानकी दादी से भी ये ही मैसेज मिला, क्योंकि जानकी दादी ने ना एक बार, जानकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो बाबा ने मतलब वहां से लोटस में थी तो वहां से नहीं आ सके, तो फिर यहाँ पर निर्वैर भाई और बड़ी दादी ने बाबा को बताया कि बाबा जानकी दादी की तबीयत बहुत खराब है। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है। तो प्रकृति माने नेचर, फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर जिनका ये शरीर बना है, तो हमें भी प्रकृति जीत बनना है। जानकी दादी से पूछते थे कभी, तो दादी यही कहती थी, मैं रोज कम से कम भी 5 मिनट इन तत्वों को योगदान करती हूँ। तो अगर हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना चाहते हैं कि ये 5 तत्व हमारी मदद करें अंत तक, तो हमें भी इन तत्वों को रोज योगदान करना पड़ेगा, और इन तत्वों के समान हमें अपने को बनाना पड़ेगा, जिससे कोई भी हमारे अंदर कमी कमजोरी ना रहे और हम संपूर्ण बन के प्रकृति जीत, मन जीत और माया जीत हो करके अपने घर चले हैं, और तीनों संपूर्ण होकर चलेंगे। ये बाबा का अंतिम मैसेज भी था और यही ममा ने भी जो मैंने आपको सुनाया ये भी ममा का भी मैसेज था बाबा। तो अब तो अंतिम समय आ ही गया है, हम सब लोगों के जाने की बारी आ ही गई है, इसीलिए अब हमें इस बात का खास ख्याल करना चाहिए, प्रकृति को भी रोज ध्यान दें। ओम शांति, ओम शांति।
अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, आंखों से होता अब भी उनका दीदार है।